श्रीमद् भगवद गीता यथारु हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता से 16वां अध्याय देवस्वर संपद स्वभाव श्लोक क्रमांक 22। एतर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारस्त्रिभिर् नरः आचार्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परमां गतिम्। एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारस्त्रिभिर् नरः आचार्यात्मनः श्रेयस् ततो यान्ति परमां गतिम्। सॉरी परमां नहीं था, पराम गति होना चाहिए। शब्दार्थ को पढ़िए, किसके पास माइक है? अनुपम कृष्ण प्रभु को पढ़िए, आपके पास कॉपी की किताब नहीं।
हे कुंती,
इनसे
विमुक्तः
विमुक्तः
मुक्त होकर
कौन्तेयः
हे कुंती पुत्र
तमः द्वारे
अज्ञान के द्वारों से त्रिभिः
तीन प्रकार के नरः व्यक्ति
आचरति
करता है
आत्मनः
अपने लिए
श्रेयः
मंगल
कल्याण
ततः
तत्पश्चात
याति
जाता है
पराम
गतिम
गंतव्य को।
हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है।
एतेर मतलब इनसे। एतेर विमुक्तः कौन्तेयः, कौन्तेयः मतलब हे अर्जुन, इनसे जो मुक्त होता है अर्थात काम से, क्रोध से और लोभ से, काम क्रोध और लोभ से। काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा विचार कीजिए कि आप एक रूम में है, जैसे इस रूम में आप दो दरवाजे देख रहे हैं कि नहीं, इससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कौन से दरवाजे से निकलेंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसा एक रूम है जिसमें चार दरवाजे हैं, एक दरवाजा काम का है, एक दरवाजा क्रोध का है, एक लोभ का है और उसके आगे खाई है जहां सर्प पड़े हुए हैं, और एक दरवाजा है जो आप मुक्ति के द्वार देगा और वह है भगवान के द्वारा बताई गई विधि का पालन करना। तो अगर व्यक्ति काम क्रोध और लोभ के द्वार खोलता है तो नीचे खाई में गिरेगा, लेकिन अगर विधि का मार्ग खोलता है तो तुरंत निकल जाएगा। इस संबंध में एक और उदाहरण बड़ा सुंदर है। आप एक धारणा कीजिए कि एक स्टेडियम है, मैंने उदाहरण पहले भी दिया है, स्टेडियम में एक अंधा व्यक्ति वो डंडे को लेकर कैसे ठोक रहा है कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है। प्राय स्टेडियम में एक ही रास्ता होता है बाहर निकलने का, और जब वो स्टेडियम नहीं समझते, जहां क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जब वाकई बाहर निकलने के रास्ते पे आता है तो अपना हाथ खुजाने लगता है, फिर आगे चला जाता है। अर्थ समझ रहे हैं, मानव जीवन जो है वो वैसा मौका है जब व्यक्ति बाहर निकल सकता है, लेकिन उस टाइम व्यक्ति इंद्रियति में लग जाए तो फिर अब 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में किसी में भी बाहर निकलने का मौका नहीं है, वो अंधी है बिल्कुल, वहां पर अंधा तो है ही व्यक्ति, ब्लॉक है, और बाहर निकलने का रास्ता नहीं, केवल बाहर निकलने का रास्ता है मानव जीवन में। इसीलिए हम बोल रहे हैं नरह शब्द आया है, जानवर शब्द नहीं आया, नरह लिखा है। इंसान के लिए ही संभव है कि वह विधि का पालन कर सकता है और इस विधि का पालन करके क्रमशः भगवान के धाम जा सकता है। ठीक है, चलो बलदेव विद्याभूषण की टीका को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि पहली चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध और लोभ को त्यागता है तो उसका फल क्या होता है। उसका फल यह है कि व्यक्ति क्रमशः मुक्त हो जाता है, और उसके बाद वह कह रहे हैं कि ऐसे साधन को करता है जो उसके उसके लिए लाभदायक हो। यहां पे एक शब्द आया है श्रेय। श्रेय का मतलब है आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसका फल आपको आज नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं, बैंक में आप कुछ होता है रिकरिंग बोलते हैं, आप 3000 रुपए रोज जमा कीजिए, 22 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो पैसा आज नहीं मिल रहा है, वो सब जमा हो रहा है और इकट्ठा होकर के आपको इंटरेस्ट के सहित मिलेगा। तो ये श्रेय कहा जाता है कि आगे मेरे लिए कुछ लाभ हो, और प्रेयस कर तब जानते हो कि इस समय होने वाली इन तृप्ति के लिए व्यक्ति कार्य करे। तो पूरी दुनिया इस समय काम क्रोध लोभ के लिए में फंसी पड़ी है, इसलिए वो केवल प्रेयस के लिए काम करते हैं। इफ इट फील्स गुड डू इट, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, आपके लिए अच्छा है ये महत्वपूर्ण नहीं। तो श्रेय का मतलब है व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भले ही मेरे लिए अच्छा ना अभी नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन मेरे लिए अच्छा है। आप कहेंगे इसमें प्रभु कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बात हमको सबको पता है, लोग साधना भक्ति छोड़ क्यों देते। अब मैं से पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं, आप बताइए कि क्या कारण है साधना भक्ति लोग क्यों छोड़ देते। हाँ बोलिए,
कहा जाता है कि अगर हमने किसी चीज को और इंपॉर्टेंट दिया, उससे ज्यादा हमें लगता है हम ट्रैफिक नियम तभी तोड़ते हैं जब हमें लगता है कि हम कोई चीज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको सिद्धांत जब मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर देना पड़ेगा, उसको समझाइएगा एक्सप्लेनेशन के एग्जांपल के बाद के द्वारा। बाद में मैंने कुछ बात बोली है उसी से लिंक है कि साधना भक्ति क्यों छोड़ देना है लोग, उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं,
और उसको टेस्ट नहीं मिल रहा।
ये गलत है उत्तर है, ये गलत उत्तर है। क्यों गलत उत्तर है, उसका कारण है। गलत उत्तर ये है कि श्रेयस की डेफिनेशन यही है कि आपको इस समय कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। साधना व्यक्ति इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि टेस्ट नहीं मिल रहा है, सत्य बात है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में टेस्ट नहीं मिलता है।
पेशेंस पेशेंस नहीं है ना, धैर्य नहीं है,
श्रेय पे नजर नहीं है, आगे कितना बड़ा लाभ होने वाला है उस पर नजर नहीं है। जो लोग, मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, अब आईएएस की तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या उनको कुछ अच्छा लगता है बताइए, 14-14, 15-15 घंटे काम पर पढ़ना, क्या जरा सा भी टेस्ट मिलता है पॉलिटिक्स ज्योग्राफी या कहाँ कहाँ की बात पढ़ने के लिए? लेकिन क्योंकि उनकी नजर श्रेय पर रहती है इस कारण से वो मेहनत करते हैं। तो क्योंकि जब व्यक्ति श्रवण नहीं करता है प्राय रूप से ठीक प्रकार से, तो श्रेय पर नजर नहीं रहती कि भगवत धाम की प्राप्ति करनी मेरे को। तो अगर थोड़ी बहुत तपस्या इस साधन काल में है तब का मतलब है आपको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ये खैर अनर्थ निवृत्ति तक होता है, उसके बाद ही प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जो अच्छा लगना है उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, ये भी समझ में आना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन श्रेय पे नजर नहीं रहती, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसका डिस्ट्रैक्ट का मतलब है दिग्भ्रमित हो जाते हैं, किस लिए आए भक्ति में भूल जाते हैं। तो अगर श्रेय पे नजर रहेगी तो व्यक्ति करेगा ठीक प्रकार से काम। अगर मान लीजिए उसको अच्छा नहीं भी लग रहा है कोई काम, नियम पालन करने में दिक्कत हो रही है, तो भी उसको सहन करेगा क्योंकि आगे बहुत लाभदायक है मेरे लिए। मेन बात है श्रेय पे नजर रहनी चाहिए, उसका आधार है श्रवण, श्रवण करेंगे तो सही है। क्योंकि आप टेस्ट के बारे में अभी नहीं बोल सकते, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको नाम जब में टेस्ट है कभी भी और हमेशा और हर दिन, फिर भी भक्त लोग करते हैं। हाँ, अब यह है कि आप एक महीना करेंगे तो भगवान कृपा करके 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको रुचि देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हर समय हर क्षण टेस्ट है, वो तो अभी व्यवस्था किसी की भी नहीं है, एटलीस्ट है आप लोगों की नहीं है। तो इसीलिए कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति विज्ञान महाराज बोलते राग सही स्तर है भगवान की पूजा करने का, सर्वश्रेष्ठ स्तर है कि भगवान की हम प्रेम में पूजा करें, लेकिन प्रेम के नीचे वाला स्तर क्या है, कर्तव्य बुद्धि, वहां से सच्ची भक्ति शुरू होती है। कर्तव्य का अर्थ क्या है, आपको अच्छा लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है करना,
ड्यूटी
समझ में आ रहा है ना। इसे सतगुण के स्तर पे आप आते हैं। अब क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि नहीं है तो लोग छोड़ते आ रहे, मेरे को टेस्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो छोड़ दे बस। अब भगवान आगे जाके बताएंगे, अभी आप 18वें अध्याय में देख लीजिएगा, शुरुआत में जो कड़वा लगता है और बाद में मीठा लगता है वह सतगुणी सुख होता है। तो कड़वापन सबको पार करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि इनके संग हो रहा है ना उनके संग हो रहा है, कि मेरे से सबको करना पड़ता है, क्योंकि चित्त में रजोगुण तमोगुण है, जब तक वो निकलेगा नहीं वो सुख की प्राप्ति नहीं, तो आग सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए श्रेय मैं सतगुण में स्थित होकर के भगवत भक्ति करना चाहता हूं तो मुझे भजन करना चाहिए इस प्रकार से, अभी कैसा लग रहा है विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है ओके। तो और यही अर्थ भी है कि तपस्या का अर्थ है अपने आश्रम में अपने स्वधर्म के पालन में जो कष्ट होता है उसको सहन करना। सुबह उठने में कष्ट होता है, स्नान करने में कष्ट होता है, जप करने में भी कभी कभी मन नहीं लगे, लेकिन व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि हमारे लाभदायक है, ठीक है। तो अपने आश्रम के अनुसार वो कार्य करता है और इस प्रकार से वह मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होता है। इतना छोटा सा टीका दिया, आप पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। जैसे आप देखो कि ऐसे कुछ भी बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गीता का पारायण करते हैं तो मन रजिस्ट करता है, आपने महसूस किया? जब हम रजिस्ट करता है मतलब क्यों कर रहे हो ये? भगवत गीता के श्लोक को आप बोलना चालू करेंगे, अभी हम बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में एक वो था ना कि कब खत्म होगा। जैसे ही कोई चीज आपकी सतगुण के सुख की तपस्या वाली चीज होगी ना, तुरंत आपका मन रजिस्ट करेगा कब खत्म होगा। देखिए जब करने बैठता व्यक्ति तुरंत घड़ी देखना चालू करता है, कब कब कितना हो गया, छह बज गया क्या, छह दस बज गया क्या, सवा छह बज गया क्या, साढ़े छह बज गया क्या। भगवान इस बात को बोलते हैं कि रोज रोज श्लोकों का पारायण करना, भगवान की बातों को बोलना, ये सब जो है वाणी की तपस्या है। तो तप मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, पहली चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि तप मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, ये बात समझना। इसीलिए खूब जमकर श्रवण करना जरूरी है, क्या कि हमारी बुद्धि बहुत मतलब दृढ़ रहे, नहीं तो इस तपस्या को हम नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद जी इसको बात बोलते हैं, व्हेन दे हैव नॉलेज देन दे विल बी अग्रीइंग फॉर तपस्या। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम तप करने के लिए, भक्ति का तप करने के लिए उत्सुक रहेंगे। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। यस,
तात्पर्य मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए।
एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये अर्थ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग जैसे ऐसा सोचिए कि मैं कोई राजा, मान लीजिए मेरा राज्य है और आप सब लोग मेरे अंदर में सेवा कर रहे थे और बड़े अनादि काल से आप कर रहे हैं खूब बढ़िया तरीके से। अब एक व्यक्ति रिवोल्ट करना चालू करेगा तो मैं देखूंगा भाई ये रिवोल्ट क्यों कर रहा है। रिवोल्ट मतलब विद्रोह, इतने साल तक सेवा करके आया है अभी क्यों विद्रोह कर रहा है, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करूंगा कि किसी तरह से ये मेरा सेवा करता रहे। तो ऐसे काम क्रोध और लोभ की हमने अनादि काल से सेवा करी है तो अब हम सेवा बंद करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो ऐसा मत सोचे कि तुरंत छोड़ देंगे वो। ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसलिए किसी ना किसी तरह से वो है हमको पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक और ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां दस्युओं के समान है, किसी याद आ रहा है भागवत में सुना था, दस्यु जो है वो जबरदस्ती आपका जो धन है वो चुरा के लेके जाएंगे। तो हमारा धन क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। अगर इंद्रियां भोग में चली जाती हैं तो भक्ति ही क्षीण हो जाती है, याद आ रहा है ना? नहीं नहीं उपदेशामृत अत्याहार प्रयास प्रजल्प सारा कुछ। तब इंद्रियां जो है वो इन काम क्रोध द्वारा कंट्रोल होना चाहती हैं, उन्मुक्त रहना चाहती हैं, तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कभी भी अटैक हो सकता है। आगे बढ़िए।
जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा।
मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूं, इसी में आपको भागवत का श्लोक याद आ जा रहा है, तदा रजस तमो भाव काम लोभा जयाश्चये चेते रेतेर अनावृतम सतम सत्वे प्रसीदति। जब इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव समाप्त होगा तो सत्वगुण में व्यक्ति स्थित होकर के सुखी होकर के भजन करेगा, एक बात। और दूसरा बात, उसको दिखने लग जाएगा वास्तविकता। आप कहेंगे ये कौन सी, ये क्या बोल रहे हैं भाई, जगत दुख का घर है सुन तो लिया है, क्या दिखने लग गया हमको? तो वो सब दिखने लगता है कि हाँ जो शास्त्र बोल रहे हैं वो इस प्रकार से यहां पे चल भी रहा है। सूक्ष्म बुद्धि, एग्जैक्टली सूक्ष्म बुद्धि, फाइन इंटेलिजेंस, ग्रॉस इंटेलिजेंस नहीं है ना। आपने देखा होगा कि जब लोगों को आप कुछ पूछिए कि मैंने हमने क्या बोला तो वो समझ नहीं पाते। उनको पूछो आलू का दाम 5 रुपए किलो है, क्या बोला? आलू का दाम 5 रुपए किलो। हमने कहा क्या पहले मैं फारसी बोल रहा था? तो समझ ना पाने के कारण क्या है? सूक्ष्म बुद्धि। तो जितना बढ़िया से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, पर्टिकुलरली जप ये हमारे और ये श्रवण करते हैं, तो हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है वो बढ़ती, सतगुण बढ़ता है, तो हम समझ पाते हैं आध्यात्मिक विषयों को। पढ़िए आगे।
तब वे वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है।
यानी यही बात अभी आचार्य बता रहे थे कि आश्रम के नियम, आश्रम के नियम किसने दिए? भगवान ने दिए शास्त्र के माध्यम से, तो उनका वो पालन करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे वह मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ता है। यस।
यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है।
ये दो लाइनों को जरा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। अभयम सत्प्रसन्न शुद्धि वाले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि ये अलग अलग वर्णों के गुण हैं और जो व्यक्ति जिस वर्ण के गुणों का आचरण करता है इससे वह मुक्ति के पथ पे या भक्ति के योग्य बनता है। आगे वो तुरंत मुक्त हो नहीं जाता है, मुक्त तो तभी होगा जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, लेकिन वर्णाश्रम का पालन करने से उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है और एक स्थिति में आकर के भगवान की भक्ति को तुरंत स्वीकार कर लेगा अगर भगवान के भक्तों का संग उसे प्राप्त होता है। तो ये अंतर देख लेना चाहिए कि वर्णाश्रम अपने आप में भगवत धाम जाने के मतलब मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक कृष्ण बस ये है कि वो ग्राउंड तैयार करता है। फसल के लिए हम लोग खेती करते हैं ना, खेती तैयार हो जाती है और खेती नहीं सॉरी जमीन तैयार रहती है। उसी प्रकार से जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा वो पहुंच नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए फसल तैयार रहती है, कह सकते क्या बोल रहा हूँ, फसल नहीं खेत तैयार हो जाता है। बीज तो तभी पड़ेगा जब भगवान के भक्तों के संग प्राप्त हो, लेकिन उसके रेडी हो जाता है भक्ति करने के लिए। और आप देख भी सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हुए भगवान की भक्ति करना कितना मुश्किल होता है, हैं प्रभु जी, होता है ना। आप खेत में मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है भगवान का भजन करना, थोड़ा वाणिज्य भी कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, गोरक्षा वाणिज्य कर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सत्वगुण ही सारा कुछ चीजें। लेकिन एकदम से ग्रॉस तो विकर्म में लग जाए तो वहां से आकर भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक पृष्ठभूमि कह सकते हैं, पृष्ठभूमि है जिसका आधार है उसके ऊपर भक्ति आसानी से हो जाती है। यस,
भाग्यशाली का क्या अर्थ हो रहा है यहाँ पे, व्यक्ति भाग्यशाली,
भाग्यशाली अर्थात उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। तो हाजी मैं सुन रहा था भक्ति योग में आप सुन सकते हैं, जब किसी के मुक्त होने का समय आता है तब तो उसे भगवान के भक्तों का संग मिलता है। बस वस्ता ये उल्टी बात है, जब उसे भक्तों का संग मिलता है तब उसका मुक्ति शुरू हो जाती। अब इस पे हम बोलने चलेंगे तो पूरा क्लास हो जाएगा, लेकिन भाग्य का अर्थ यही है कि जब व्यक्ति कई कई जन्मों में सुकृतिवान होता है तब जाके उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, और भक्ति जो अहेतु की भक्ति साधना भक्ति है उसके प्रोसेस पे वहां पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कबूतर वाला उदाहरण याद है ना, कबूतर कहीं जाकर बीट कर देता है और उसमें पीपल के बीज रहता है और वो पत्थर पे भी जो है जो पेड़ है उग जाता है। अब वो कबूतर कहाँ जाके बैठेगा पता नहीं है कि नहीं, तो भक्त लोग कबूतर की तरह उड़ उड़ करके भगवान का संदेश दे रहे हैं। अब किसको मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे रघुगण महाराज को भरत महाराज का संग प्राप्त होगा, क्या योग्यता थी, और वही भरत महाराज अपने घर में कितने साल तक रहे कुछ नहीं बोले। प्रहलाद महाराज अपने पिता को कुछ नहीं बोले, संड अमर को कुछ नहीं बोले, और अपने जो असुर बालक है वो दे रहे। अब और गहराई में जाइए, हाँ और ना मत बोलिएगा, गहराई में जाइए कि जीव यहां पे अनादि काल से और भटक रहा है, और एक ग्रह पे नहीं ब्रह्मांड में घूम रहा है, और एक ब्रह्मांड में नहीं अनेकों ब्रह्मांड में घूम रहा है, और सृष्टि होती है और एक सृष्टि नहीं अनेकों सृष्टि हो रही है। क्यों नहीं जा पा रहा भगवान के धाम, क्योंकि उसे भगवान के भक्तों का संग ही प्राप्त नहीं है। क्या आप इसको कुछ कुछ अनुभव कर पा रहे हैं, पीछे जाने का प्रयास कर सकते हैं अपने ही जीवन में कि कितने जन्मों से हम यहां फंसे पड़े, क्यों फंसे पड़े, इसी जीवन में कितनी प्रगति महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, अनादि काल से यहां क्यों फंसे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग ही प्राप्त नहीं हुए। तो इसीलिए हर भक्त को सोचना चाहिए, सच्चा भक्त वही है जिस प्रकार से अपने भाग्य को दूसरों के संग शेयर करने का प्रयास करे। हमें लगेगा क्या होगा, लेकिन कल ही प्रभु जी बता रहे थे ना, एक माला करने वाला आठ माला पे आ गया, 50 लाख नाम हो जाते हैं आठ माला करने से, और एक नाम से क्या होता है, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना शुद्धिकरण उस व्यक्ति का हो गया वो हम समझ में नहीं आता। तो हम भक्तों की तपस्या तो यही है कि किसी न किसी तरह सोचते रहे कैसे अन्य लोगों के पास ये भगवत ज्ञान पहुंचेगा, बहुत महत्वपूर्ण है उसके उनके भाग्य उदय कराना। और एक बार जिसने भक्ति करना शुरू कर दिया तो आप जानते हैं भगवान फिर उसको लेके आएंगे, फिर मौका देंगे। ठीक है,
वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है।
इसको शॉर्ट में अगर बता दें, लोग विधि का पालन करते हैं कर्म कांड करके, कर्म कांड इसलिए करते हैं ताकि स्वर्ग जाने को मिले, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि भाई इसमें कोई सुख नहीं है तो वो ज्ञान कांड पे आते हैं, फिर ज्ञान कांड करते करते जब अगर कहीं भाग्य हो गया भगवान की भक्ति भक्तों के संग प्राप्त हो गया तो वो भक्ति करने लग जाते हैं। जब बोला जा रहा है बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होगा तभी वसा कर सकेगा। ये बंद हो गया। तो भक्ति में बद्ध जीव, भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। पढ़िए।
भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है,
इसलिए मतलब आपकी मुक्ति होगी ना अनुपम कृष्ण प्रभु,
भक्ति करेंगे तो होगी।
तो कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, ये बद्ध जीव नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। एक बार जो भक्ति में आ गया वो मुक्त होके ही रहेगा।
बद्ध जीव नहीं है
ना, वो क्रमशः मुक्त होने के पथ पे आ गया। जैसे आपकी ट्रेन, मैं एकदम उदाहरण सही दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं झांसी स्टेशन पे था तो मेरी जो ट्रेन जो मुझे झांसी से लखनऊ लेके आने वाली थी उसका एंडिंग थी 33 में, और दूसरी ट्रेन उसी नाम से पुष्पक एक्सप्रेस, यस, और दूसरी ट्रेन जो थी वो जो बॉम्बे जाने वाली थी वो 34 थी। तो हम लोगों को चेंज करना था मंगला से इसमें, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस से पुष्पक में, तो हम लोग 34 में बैठ गए थे। सोचिए, एक ट्रेन ऐसे लगी है स्टेशन पे और एक ऐसे लगी हुई है, तो हम 33 की जगह 34 में बैठ गए। तो लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा कि हम लोग लखनऊ जाना चाहते हैं, मैं और मेरा मित्र। कहते नहीं, ये गाड़ी तो बॉम्बे जा रही है, तो अगर आप इस गाड़ी में बैठ जाते तो क्या कभी भी पहुंचते लखनऊ? तुरंत हट करके लखनऊ में वाली गाड़ी में बैठ गए, 33 में बैठ गए, ट्रैक चेंज किया, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ पहुंच गए, इन बैठे रहे तो बस कालांतर की बात। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया, स्वीकार कर लिया, बस बैठा रहे, उतरे नहीं, करता रहे, क्रमे क्रमे सही भक्त हो ही वे उत्तम, उत्तम भक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति करेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक। कभी कभी एक ट्रेन का सफर एक दिन में ही हो जाता है, और कभी कभी दो दिन लगते हैं, बीच में रात आती है। अर्थ समझे? क्या अर्थ समझे?
मृत्यु से कम,
मृत्यु, एक मृत्यु हो सकती है, दो हो सकती है, तीन दिन का सफर होगा तो फिर आप नहीं जाएंगे। हाँ, फ्लाइट मिल सकती है, लेकिन एक बात कहने करते हैं कि भक्ति में जो आ गया उसकी सिद्धि परफेक्ट होगी ही, इसलिए क्या जाना चाहिए। पढ़िए।
इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार चार आश्रमों तथा चार वर्णों का विधान किया गया है, विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है।
बहुत ध्यान पूर्वक बात सुनना है। सन्यासी के लिए अलग नियम है, गृहस्थ के लिए अलग नियम है, और हमने आपको याद हो हमने बताया था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण और आश्रम के नियम का पालन कर लेगा उसका वही वो दैवीय गुण होगा, और उसको मुक्त करने के लिए वही गुण काफी होगा। एक शूद्र को ब्राह्मण के कार्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता।
तो यानी कि काम क्रोध लोभ को त्यागने का, कंट्रोल करने का व्यापक तरीका क्या है? वर्णाश्रम की व्यवस्था। आप सिंपल समझ सकते हैं, शादी, शादी भी काम इच्छा को पूर्ति का एक तरीका है, लेकिन एकदम मतलब मुक्त आचरण ना हो जाए तो उसके द्वारा व्यक्ति संस्कार ग्रहण करता है, विवाह करता है, यज्ञ कर, विवाह भी एक यज्ञ है, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है, बच्चों का ध्यान रखता है, बच्चों की मतलब परवरिश करता है, तो उसके द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। इसको एक बात बहुत अच्छा और जगह बता रहे थे महाराज की, जब नदी होती है, धारण आप जानते हो नदी को क्रॉस करना उद्देश्य है, लेकिन साथ में नदी के संग बहना भी पड़ता है। तो जब तक शरीर में है और अहंकार से युक्त है तो उसको सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब तक पूरी तरह साक्षात्कार ना हो कि आप शरीर नहीं है आप आत्मा है, तो सतोगुणी जीवन जीना चाहिए, और सतोगुण का मुख्य बात है विधि विधान का पालन। तो उस प्रकार से पालन करता है तो धीरे धीरे चेतना शुद्ध होती है, फिर उसका अनुभव हो पाता है कि वो शरीर नहीं है वो आत्मा है, वो समझ पाता है इन बातों। क्या आपका ऐसा अभी कभी अनुभव हुआ है कि कोई व्यक्ति को आप समझाइए कि वो शरीर नहीं है वो आत्मा है और कुछ समझ नहीं पाता वो? बहुत लोग होते हैं। तो कारण क्या है? उनकी चेतना ढकी हुई है, उस सिद्धांत को भी समझ नहीं पाते, अनुभव की तो बात आगे की। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझ पाता है अगर विधि विधान का पालन करे। इसलिए विधि का पालन करने का, पॉलिसी को पालन करने का इच्छा हमारी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम पालन नहीं करते हैं तो दंड संस्था दे या ना दे, हमारे ऊपर ही दंड हो जाएगा कि हम लोग चेतना, हमारी निश्चेतना कवर हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये उत्साह हमारा खुद का होना चाहिए विधि का पालन करने का। कोई प्रश्न या कोई टीका है?
बोलिए। मैंने सुना है काम क्रोध लोभ को कभी त्यागा नहीं जा सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी में भी क्रोध था। भक्त जो है वो अपने सत्वगुण में आके उस चीज को भगवान के लिए, जैसे लोभ होता है, जो लोभ है वो भगवान के लिए लोभ वो कर लेते हैं, भगवान की भक्ति के लिए लोभ हो जाता है।
रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्च ए, भागवत कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं तो काम और क्रोध शमन होता है। क्या हनुमान जी कभी स्त्री के पीछे भाग रहे थे? कभी भी नहीं भागे,
था उनके पास,
ठीक है, लेकिन क्रोध उनकी इंद्रिय तृप्ति भी बाधा नहीं देता है। देखिए किस प्रकार का क्रोध है, देख लेना चाहिए उनका दिल,
सत्वगुणी क्रोध होता है लेकिन होता तो है।
देखिए हनुमान जी का आप उदाहरण नहीं ले सकते, क्योंकि हनुमान जी पूरी तरह से दिव्य स्तर पर स्थित व्यक्ति है। या अर्जुन को भी क्रोध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन वह भगवान को अर्पित क्रोध है, और वह जिस स्तर से कर रहे हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्जुन आप समझ सकते हैं क्या? अच्छा, अर्जुन काम से मुक्त है कि नहीं? श्रीनाथ जी क्या लगता है आपको? तो गृहस्थ आश्रम में आप कहेंगे नहीं काम से कैसे मुक्त है, क्योंकि जब वाकई काम की परीक्षा हुई और ऋषि ने प्रस्ताव दिया तो बिल्कुल नहीं किया।
जैसे रामचरितमानस में ही आता है कि जैसे काम ही प्यारी लगे, जैसे भगवान कामी व्यक्ति को काम वैसे है, क्योंकि
हाँ लेकिन
तो होता है,
गलत है उदाहरण आपका। क्यों? क्योंकि शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं जिस प्रकार से एक युवती को युवक प्रिय लगता है, युवक को युवती प्रिय लगती है, ऐसे आप मुझको प्रिय लगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि काम रहेगा। जहां काम रहेगा वहां प्रेम नहीं रह सकता।
काम रहता है लेकिन वो काम जो पहले वो लस्टी था वो अब सत्वगुण का काम आ गया।
एक ये सब सब गलत है, क्षमा कीजिएगा, गलत है ये। अपन ये जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप वेस्ट में नहीं जा सकते। काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। अगर भगवान देखिए अगर ऐसा समझिए, काम का मतलब इच्छा है, इच्छा है, जैसे मान लीजिए किसी को खाना बनाने की इच्छा है, ठीक है, तो आप इस इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा में लगा दीजिए। समझिए मेरी बात। लेकिन अगर आप टेक्निकल टर्म लेंगे काम, जैसे भगवान यहां बोल रहे हैं काम को, काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, कुछ कार्य करने की इच्छा की बात नहीं कर रहा, कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वो नहीं कह सकते कि भगवान वो उसको भगवान त्यागने के लिए बोल रहे हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना ही है। उसको त्यागे बिना हम भगवान के भजन कैसे कर सकते? सिंपल उदाहरण है भाई, सोने की इच्छा तो सबकी होती है कि नहीं? और सुबह किसको उठना अच्छा लगता है? बहुत कम लोग हो सकते हैं। जब हम उस इच्छा को त्यागते हैं तभी तो मंगल आरती आ सकते हैं। आप बताइए कि उस इच्छा को लेकर के मंगल आरती कैसे जाएंगे, कि मैं सोता भी रहूं और मंगल आरती भी चला जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता, जा सकते लेकिन वो अलाउड नहीं है ना, उठा के लेके जाना पड़ेगा किसी को सोते सोते। तो इसलिए काम और ये, हाँ लेकिन काम को भी अगर कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं इस चीज को, हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक बीज है, अगर जला करके भगवान को अर्पित किया जाता है, सॉरी जमीन में डाला जाता है तो उगता नहीं है। यस, मैं कुब्जा का उदाहरण मेरे मन में आ रहा था कि वो कृष्ण की ओर अपना काम समर्पित किया। और इस चीज का उदाहरण भागवत में भी दिया गया है, कामात क्रोधात भयात द्वेषात, काम क्रोध भय और द्वेष से अगर कृष्ण का स्मरण करते तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन शुद्ध होना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि काम और प्रेम मतलब काम परिवर्तित हो जाता है प्रेम, ऐसा नहीं हो सकता है। वो काम समाप्त होता है, रजगुण तमगुण समाप्त होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं आ रही, यहाँ पे बात आ रही है कि काम क्रोध और लोभ को त्याग करके व्यक्ति विधि विधानों का पालन करे। देखिए जब ये नारद मुनि बोल रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई साधना भक्ति का तरीका नहीं है, ये वर्णाश्रम का तरीका नहीं है। वर्णाश्रम का तरीका या भगवान की भक्ति का तरीका यही है कि प्रेम भाव से, अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन किया जाए। ऐसे कैसे भी आप कृष्ण का अपने ध्यान को फोकस करते हैं तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा आचार्य लोग उसको शुद्ध भक्ति नहीं है, बस ये वाली बात। हाँ, अनुकूल कृष्ण शरणम नहीं, शरणम नहीं, ठीक है, ओके। हाँ,